पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17 पद। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरी विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, पेगुमन की कलीसिया ऐसे स्थान में स्थित थी जहां पर मूर्ति पूजा प्रचलित थी और जहां शैतान का सिंहासन था। मैंने आपको बताया था कि शैतान का सिंहासन उस स्थान को दर्शाता है जहां शैतान बैठता है। वहां पर सम्राट और मूर्ति पूजाओं के लिए मंदिर बने हुए थे। पेगुमन का शहर शैतान के अधिकार क्षेत्र का शहर था, क्योंकि कलीसिया ऐसे स्थान में स्थित थी जैसे कि पेगुमन है। इसलिए वहां के लोगों को विश्वास में बने रहना आसान काम नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने विश्वास को त्याग नहीं दिया। उन्होंने प्रभु के नाम को थामे रखा और विजय प्राप्त की। और वो व्यक्ति जो सबसे आगे खड़ा था वो अंतिपास था, जैसे कि आज के बाइबल पाठ में लिखा हुआ है। आज के बाइबल पाठ में प्रभु अंतिपास को मेरा साक्षी कहता है, मेरा विश्वास योग्य साक्षी, प्रभु का विश्वास योग्य साक्षी। प्रभु के द्वारा उसे इस तरह से पुकारा गया, इसलिए हम देख सकते हैं कि उसका विश्वास किस प्रकार का था। यदि प्रभु उसे विश्वास योग्य साक्षी कहता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी विश्वास योग्यता बाहरी शारीरिक विश्वास योग्यता नहीं थी, बल्कि आत्मिक विश्वास योग्यता थी। इसका मतलब यह है कि उसने बुराई को दूर कर दिया था, अपने आप को दीन कर दिया था और प्रभु के हृदय के सदृश बन गया था। साथ ही साथ वो प्रभु की साक्षी देने के लिए एक साक्षी के रूप में एक मुश्किल घड़ी में भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य था। खास तौर पर उसने विश्वास योग्यता से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, यहाँ तक कि ऐसे स्थान में भी जो शैतान का गढ़ था, जहाँ मूर्ति पूजाएं भरी हुई थी और पाप और बुराई प्रचलित थी, और अंत में वो शहीद हो गया। अंतिपास के शहीद होने के विषय में कहानी भी है। रोम का एक अधिकारी, उसने अंतिपास को मूर्तियों के आगे डाल दिया और उसने कहा कि हे अंतिपास, सम्राट की इस मूर्ति के आगे घुटने टेक। और फिर अंतिपास ने इस तरह से उत्तर दिया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु केवल यीशु मसीह ही है, मैं यीशु मसीह के अलावा किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। ये अधिकारी यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि चिल्लाने लगा कि अंतिपास, क्या तू नहीं जानता कि तू संपूर्ण संसार के विरुद्ध हो चला है? फिर अंतिपास ने कहा कि पूरे संसार के विरुद्ध होकर मैं यीशु मसीह को प्रभु का प्रभु के रूप में समर्थन देता हूँ। और तब उस अधिकारी ने अत्यधिक क्रोधित होकर अंतिपास को धधकते हुए पीतल की भट्टी में डाल दिया और उसे मार डाला। परंतु इस तरह के भयानक सताव और कठिनाइयों में भी पिरगमुन की कलीसिया के सदस्यों ने अपने विश्वास को बनाए रखा। इस प्रकार से जितनी गंभीर सताव और पीड़ाएं होती हैं, तो जिनके पास विश्वास होता है वो उतनी ही स्थिरता से प्रभु को थामे रखते हैं। आप अपने आप को अंतिपास के स्थान पर रखकर देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप भी वही अंगीकार कर सकते हैं जो अंगीकार अंतिपास ने किया? क्या आपके पास भी शहादत देने वाला विश्वास है? वे जो आत्मा में आ गए हैं, वे निश्चित रूप से शहादत दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार के सताव को पार कर सकते हैं, मगर वे जो शारीरिक है वे ऐसा अंगीकार नहीं कर सकते, हालांकि वो ये क्यों ना सोचे कि वे ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी आत्मा में आ जाना चाहिए। जब आप आत्मा में आते हैं तो आप ऐसा विश्वास दिखा सकते हैं जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में नहीं बदलता। जितना गंभीर सताव और मुश्किलें होती हैं, उतना ही स्थिरता से जिनके पास विश्वास होता है वे प्रभु को थामते हैं। परंतु उन लोगों में भी जो चर्च जाते हैं लेकिन सत्य नहीं जानते, उनमें कुछ ऐसे हैं जो इस बात को हो सकता है ना समझ पाए। उन्होंने तो प्रभु पर विश्वास किया था, वो तो विश्वास योग्य थे, लेकिन क्यों उन पर सताव हुआ? क्यों उन्हें शहादत देनी पड़ी? यदि परमेश्वर सचमुच जिंदा है तो कैसे परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? ये सोचकर वो लोग निराश हो सकते हैं और चर्च को छोड़कर चले जा सकते हैं, मगर यदि वे परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को एहसास करें तो उनकी गलतफहमी दूर हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, ना केवल शुरुआती कलिसियाओं में जैसे कि पिरगुमन की कलिसिया थी जहां पर अंतिपास शहीद हुआ था, बल्कि कहीं भी क्यों ना हो जहां पर शुरुआत में मसीहत स्थापित हुई थी। यदि हम कोरिया की बात करें, चोसन वंश में जब मसीहत का यहां पर परिचय हुआ तो बहुत सारे सताव और पीड़ाएं यहां पर हुई और बहुत सारे लोग शहीद हुए। शुरुआत में संसारिक लोगों ने मसीहत की शहादत को तिरस्कृत किया। शहीद होना उनके लिए एक प्रकार से मनोरंजन बन गया था। रोम के नागरिक बहुत सारे मसीहियों को एक बड़े स्टेडियम में शहीदों की मृत्यु मरते हुए देखते थे। जो मसीह लोग थे उनका सर कलम कर दिया गया, शेरों के शिकार कर दिए गए, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, और ये सारा दृश्य रोम के बहुत से नागरिकों ने देखा। बहुत सारे नागरिकों ने सबसे पहले तो उन्हें मूर्ख जाना, बहुत मूर्ख, मगर जल्दी ही वे सोचने लग गए कि ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें बड़ी उत्सुकता होने लग गई कि मरते हुए भी उनके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट थी, ये कैसे ऐसे हो पाया? कौन है ये यीशु जिस पर वो विश्वास करते हैं? उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया और अब वो मसीहत में रुचि रखने लग गए और अधिक से अधिक लोग मसीहत के बारे में अब जानना चाहते थे। परिणाम स्वरूप अंत में बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और बाद में जो सम्राट था कॉन्स्टेंटीन ने मसीहत को मंजूरी दे दी और उसने यहां तक कि मसीहत को राज्य का धर्म के रूप में स्थापित किया। यह है परमेश्वर का प्रावधान जिसे मनुष्य कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए क्या उनका नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे शहादत देते हैं प्रभु के नाम के चलते, इसलिए वे स्वर्ग में अच्छे स्थान में जाते हैं, कम से कम तीसरे स्वर्ग के राज्य में, जैसे कि प्रतिज्ञा की गई है। यदि वे तमाम परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य रहे हैं तो वे नई यरूशलेम जा सकते हैं। ये कितनी महान आशीष है। इसीलिए ये एक आशीष है, शहीद की मृत्यु मरना, महानता से उन्हें प्रतिफल दिया जाएगा और परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में उन्हें पहचान मिलेगी। और इसके बगैर मसीहियत पूरे यूरोप में और पूरे संसार भर में इतनी तेजी से फैल नहीं पाती, और साथ ही कोरिया में भी, क्योंकि ऐसे बहुत से विश्वास के पूर्वज थे जो शहीद होकर मर गए, इसलिए मसीहत मजबूती से उन्नति कर पाई जैसे कि आज है, और वो भी केवल 100 वर्ष के समय काल में। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसा उसे अच्छा लगे वैसा मसीह जीवन जी, क्या वो अपने विश्वास में बना रह सकता है जब शहादत का जोखिम या मृत्यु का जोखिम उसे उठाना पड़े? ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें विश्वासियों ने चिकित्सक उपचार पर भरोसा किया, ऑपरेशंस कराए, मगर चीजें ठीक नहीं हुई। किसी व्यक्ति ने आंख का ऑपरेशन कराया लेकिन अंत में उसकी आंख की दृष्टि चली गई। कुछ ने कैंसर के ऑपरेशन कराए मगर फिर से होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। मैंने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं। यदि वे परमेश्वर पर निर्भर रहते तो कुछ नहीं होता, मगर उनके पास विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने संसारिक विधियां अपनाई और जैसे उन्होंने उम्मीद की थी चीजें वैसे नहीं हुई, इसलिए मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है। इसलिए आपको हर दिन अच्छा मसीह जीवन जीना चाहिए और आपको अपने विश्वास में बने रहना चाहिए, तो फिर आप विश्वास से चंगाई पाएंगे जब आप बीमार होते हैं। इससे भी बढ़कर यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति शहादत के समय तक पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने विश्वास में बना रह सके तो ये अच्छा होगा, मगर तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्ति के लिए विश्वास में बने रहना खासतौर पर जीवन के जोखिमों में मुश्किल होता है, उसके लिए बिल्कुल भी ये आसान नहीं होता, बल्कि अवसर ये ज्यादा होते हैं कि वो अपना विश्वास त्याग सकता है जब गंभीर स्थिति का वो सामना करता है या जीवन के जोखिम का, क्योंकि उसने अपने हृदय की बुराई को दूर नहीं किया है। केवल वही जो विश्वास योग्य है बिना हृदय के बदलाव के वे विश्वास में बने रह सकते हैं, चाहे जीवन के जोखिम का सामना क्यों ना करें, और वे शहीद भी हो सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा जितना वो बुराई को दूर करते हैं, और वे पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा पवित्रीकरण को साध सकते हैं। अंतिपास इस तरह का व्यक्ति था। उसकी शहादत पिरगमुन की कलीसिया के लिए एक बल बन गया कि वे प्रभु के नाम को थामे रख सके और विश्वास की दौड़ को दौड़ सके। अंतिपास की शहादत को देखकर ना तो वे मृत्यु से डरे और ना ही उन्होंने अपने आप को कहीं छिपाया, बल्कि उन्होंने प्रभु के नाम को थामे रखा और उन्होंने जीत हासिल की अपने विश्वास के द्वारा। और प्रभु उस कलीसिया को जो पिरगमुन है इस बात के लिए प्रशंसा देता है। पिरगमुन की कलीसिया में अंतिपास और दूसरे विश्वासी सदस्यों के समान ही आप भी विश्वास योग्य प्रभु के साक्षी बने, जो चर्च को थामे रख सके दाएं और बाएं डगमगाए बगैर, चाहे सताओ या पीड़ाएं क्यों ना हो। यद्यपि पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु ने इस तरह से सराहा, मगर प्रभु अब बड़ी गंभीरता से उन्हें डांटना शुरू करता है। 14 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। पिरगमुन की कलीसिया में अंतिपास शहीद होकर मरा और उसका अनुसरण करते हुए दूसरे लोग अपने विश्वास में बने रहे, परंतु वहां पर दूसरे कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऐसा नहीं कर पाए। प्रभु कहता है कि वे बिलाम की शिक्षाओं पर चलते हैं, और गंभीरता से प्रभु ने उनके काम के लिए उन्हें डांटा। इसलिए जब आप यह संदेश सुने तो अपने आप को आप जांचें कि आप तो उनमें से एक नहीं हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को सुन रहे हैं या बिलाम की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षाओं को मानते हैं, और प्रभु गंभीरता से उन्हें डांटता है। मुझे आशा है कि आपको पता होगा कि बिलाम की शिक्षा क्या है और निकोलियों की शिक्षा क्या है। कौन है वे जो बिलाम की शिक्षाओं पर चलते हैं और निकोलियों की शिक्षाओं को मानते हैं? इसे समझने के लिए हमें उन घटनाओं को देखना होगा जो घटना बिलाम और इसराइलियों के बीच हुई थी, जो कि गिनती 22 अध्याय से 24 अध्याय में लिखी हुई है। बिलाम बोर का पुत्र था और पतोर महानद के तट के पास रहता था। वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता था, विशेष रूप से कहें तो वो जानता था कि परमेश्वर से कैसे बातचीत की जाती है। और एक दिन बालाक जो मोआब का राजा था, उसने उसे अपने पक्ष में कुछ करने को कहा। बालाक ने बिलाम को कहा कि वो इसराइलियों को श्रापित करे। बिलाम अपने दिनों में बहुत विख्यात था, दूसरे देशों में भी था, इसलिए वो उसके पास आए कि वो इसराइलियों को श्राप दे। बालाक जो मोआब का राजा था, वो जानता था कि परमेश्वर इसराइलियों के साथ है, और जब उसे पता चला कि इसराइली उसके देश में आ रहे हैं, तो वो डर गया और उसने बिलाम से मदद मांगी। जब बिलाम ने परमेश्वर के सामने विनती की कि परमेश्वर की इच्छा इसके विषय में क्या थी, तो परमेश्वर ने कहा कि तू उसके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इसराइली परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, है कि नहीं? वे आशीषित लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसके साथ मत जा, जैसे कि लिखा है कि तू उसके साथ मत जा और ना उन लोगों को श्राप दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। यही असली उत्तर है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो अपना मन बदल दे। परमेश्वर आगे पीछे नहीं डगमगाता। यदि परमेश्वर एक बार उत्तर दे तो वही उत्तर होता है। जब बिलाम को परमेश्वर से ये उत्तर मिल गया था, तो उसने बालाक की बात का इनकार किया। परंतु मोआब के राजा ने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी राजकुमारियां, चांदी और सोना बिलाम को भेजा। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने इन चीजों को बिलाम को भेजा? क्यों मोआब के राजा ने अलग अलग प्रकार की सुंदर सुंदर राजकुमारियों को सोना और चांदी के साथ बिलाम के पास भेजा? ये बिलाम के हृदय को बदलने के लिए था, ताकि वो करे जो मोआब का राजा चाहता था। बिलाम को उनसे मिलना नहीं चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था। उसे फिर से परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर पहले से उसे उत्तर दे चुका था। गिनती 22 अध्याय 17 पद में बालाक बिलाम से कहता है, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। वो मीठी मीठी बातों से बिलाम को भरमा रहा है, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम सोना और चांदी को देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसके अंदर पैसों के प्रति लालच था, इच्छा थी। इसलिए शैतान की अभिलाषा के द्वारा उसका हृदय भरमावे में आ गया। और ऐसा मामला इस चर्च के भी कुछ सदस्यों के साथ है, और ये चीजें आपके रोजमर्रा जीवन में दिख सकती हैं, आपके विश्वासी जीवन में। यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अभिलाषा को नष्ट कर दें तुरंत ही, तो फिर से आप अभिलाषा में नहीं पड़ सकते। परंतु यदि आपके हृदय में डगमगाने का स्थान हो, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, तो शैतान निश्चित रूप से फिर से आपको अभिलाषा में डालेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा फिर से कभी ना कभी आ सकती है, यदि आप उसे दूर ना करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी पेड़ को उखाड़ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलता, इसलिए आप पहले ही कोशिश में छोड़ देते हैं। परंतु यदि वो थोड़ा सा भी हिले, तो आप लगातार उसे उखाड़ते जाइए। मान लीजिए आप किसी पेड़ को किसी ना किसी कारण से उखाड़ना चाहते हैं, तो आपको उसे हिलाना पड़ेगा। जब पेड़ हिलता है, थोड़ा सा भी हिलता है, तो फिर आप लगातार उसे हिलाते रहेंगे कि वो उखड़ जाए। जब मैं छोटा बच्चा था, यदि मेरे घर के पीछे पहाड़ी पर मुझे एक अच्छा पेड़ दिखाई देता था, मैं उसे उखाड़ने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे मैं अपने घर के आगे लगाना चाहता था। और जब वो पेड़ बिल्कुल नहीं उखड़ता था, तो मैं उसे छोड़ देता था। बिल्कुल ऐसे ही जब सांप ने हवा को भरमाया, उसने जगह दी शैतान को, इसीलिए सांप उसे लगातार भरमाता गया और अंत में हवा ने धोखा खाया। जब धूर्त सांप ने हवा से बातें की, यदि उस वक्त हवा परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तर देती, तो वो धोखा नहीं खाती। मगर उसने वही बातें नहीं कही जो परमेश्वर ने उसे कहा था, बजाय इसके उसने उन बातों को बदल डाला जो परमेश्वर ने कही थी। तब सांप लगातार उसे धोखा देता गया, और अंत में उसने धोखा खाया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम निश्चय ही मर जाओगे। शैतान जानता था कि वो धोखा खाएगी, इसलिए सांप ने मीठी बातों से उसे धोखा दिया। आपके बारे में क्या है? जैसे कि आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, इसलिए आप अभिलाषा में फंस जाते हैं और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, और फिर शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है और फिर आप क्लेश और आजमाइशों से गुजरते हैं। आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने इन स्टेप्स को पार कर लिया है, और साथ ही यदि भी ऐसा लगता है कि बाहरी रूप से तो आप पार कर गए, मगर अगर आपने पूरी तरह से अपने हृदय से इसे पार नहीं किया तो शैतान फिर से आपको अभिलाषा में डाल सकता है। ऐसा लगता है कि बिलाम ने पहली परीक्षा को पार कर दिया, मगर क्योंकि आदर और विख्याति के लिए उसके पास अभिलाषा थी, लालच था, इसीलिए दूसरी बार वो अभिलाषा में फंस गया। हालांकि बिलाम ने बाला के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालक अपने घर को सोना चांदी से भरकर मुझे दे दें, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। उसका हृदय पहले से डिग चुका था। हालांकि वो परमेश्वर की इच्छा जानता था, परंतु वो कहता है इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो। उसे उन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन उसने उन्हें रुकने को कहा ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। वो पहले से ही जाल में फंस चुका था अपनी स्वार्थी इच्छा की वजह से, और ये प्रलोभन उसे बहुत मीठा सुनाई दे रहा था। इस प्रकार से वो अब प्रलोभन में फंस चुका था। परमेश्वर पहले से उसे सीधे रूप से उत्तर दे चुका था, लेकिन वो कहता है कि वो फिर से परमेश्वर से पूछेगा, ये देखने के लिए कि कहीं उसे मौका मिल जाए कि परमेश्वर उसे हरी झंडी दिखा दें कि वो आगे बढ़ सके। और परमेश्वर ने उस रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। अब परमेश्वर उसे कहता है कि उनके साथ चला जा। क्यों परमेश्वर कहता है कि उनके साथ चला जा? क्या परमेश्वर ने पहले उसे उनके संग जाने से इनकार नहीं किया था? और क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपना मन बदल देता है? आपको इस स्थिति को अच्छे से समझना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जिनका परिणाम इसी तरह का होता है। ये अक्सर होता है जब मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको उत्तर देता हूं, चाहे आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, परंतु यदि उत्तर आपके विचार अनुसार ना हो, या फिर अगर आपके पास कोई और विचार हो, या फिर स्वार्थ या लालच आपके अंदर हो, तो फिर आप वही प्रश्न मुझसे फिर से पूछते हैं, यद्यपि मैं आपको पहले से उत्तर दे चुका हूं। तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वही करता हूं जो परमेश्वर यहां कर रहा है। इसलिए आपको इस स्थिति को अच्छे से समझना है। यदि आप शारीरिक रूप से समझें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बिलाम तो बालाक के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गया, मगर परमेश्वर ने साफ रूप से बिलाम को कह दिया था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जब बिलाम ने सबसे पहले परमेश्वर से पूछा था। जब बिलाम ने परमेश्वर को दूसरी बार पूछा और परमेश्वर ने उसे जाने दिया, उसका कारण यह था कि परमेश्वर बिलाम की हृदय को जानता था। यदि बिलाम साफ हृदय का व्यक्ति होता तो चाहे किसी भी प्रकार का सम्मान या पैसा उसे दिया जाता तो अभी वो उनके संग नहीं जाना चाहता। वो फिर से परमेश्वर से नहीं पूछता। आप में से कुछ लोग मुझसे फिर से पूछते हैं, हालांकि मैं पहले से आपको उत्तर दे चुका होता हूं। वे लोग भी बालाम के इस मामले में पाए जा सकते हैं। आप दानियल और उसके तीन दोस्तों के बारे में सोचिए। दानियल ने क्या किया? यहां तक कि ऐसी स्थिति में जब उसे शेरों की मांद में डाला जाना था, उसके पास धन्यवाद के साथ शहीद होने वाला हृदय था। उसने समझौता नहीं किया। वो प्रार्थना कर सकता था कि परमेश्वर मैं तो आपसे प्रार्थना करता था अपनी खिड़की को खोलकर यरूशलेम की ओर, क्या मैं अब इस खिड़की को एक महीने के लिए बंद कर दूं ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो राजा के बाद दूसरा व्यक्ति था। वो एक महीने के लिए प्रार्थना बंद कर सकता था, या अपनी खिड़की को बंद करके प्रार्थना कर सकता था, या फिर वो दिखावा कर सकता था कि महीने भर के लिए उसने प्रार्थना बंद कर दी है और परमेश्वर से अपनी खिड़की को बंद करके कंबल के नीचे अंधेरे कमरे में प्रार्थना कर सकता था। क्या आपको लगता नहीं कि वो ऐसा कर सकता था? मगर दानियल ने कभी भी उनके साथ समझौता नहीं किया। चाहे उसे शेरों की मान में क्यों ना डाला जाए, तो भी वह राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा। उसने समझौता नहीं किया, बिल्कुल भी उनके साथ समझौता नहीं किया। इसलिए स्वर्ग में दानियल की महिमा कितनी महान होगी। यदि बिलाम साफ हृदय का व्यक्ति होता तो वो फिर से परमेश्वर के पास पूछने नहीं जाता। इससे भी बढ़कर वो जानता था कि परमेश्वर इसराइलियों के साथ है। इसराइलियों को शाप देने के उनके इस प्रस्ताव को वो स्वीकारता नहीं, मगर उसका हृदय पहले से डगमगा चुका था। इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर उसका हृदय जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बिलाम की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया। चाहे परमेश्वर उसे रोक भी देता तो भी बिलाम का हृदय फिर से डगमगा सकता था यदि बालाक के दास और अधिक संपत्ति और आदर के द्वारा उसे भरमाते। इसीलिए बलपूर्वक उसे रोकना वो न्याय के नियम के विरुद्ध हो जाता। क्या आपको लगता नहीं कि यदि परमेश्वर चाहे तो सारी आत्माओं को बचा सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि परमेश्वर आग से लिख सकता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। वो आकाश में ऐसा लिख सकता है। यदि आप मेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को स्वीकारेंगे नहीं तो तुम नर्क चले जाओगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे? वे परमेश्वर से डरेंगे, वे पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर और प्रभु को ग्रहण करेंगे। मगर यह न्याय अनुसार नहीं है। मनुष्य जुताई इस तरह से नहीं होती। यदि परमेश्वर लोगों को अपनी संतान इस प्रकार से बनाए तो इसका क्या लाभ होगा? मान लीजिए आपने एक बड़ी धनराशि छोटे से बच्चे को दी और आप उसे कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पिता पुकारना, जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। और अब वो आपको पिता कहते हैं, क्या आप उनसे आनंदित होगे? क्या आप उनसे खुश होगे? क्या आप उनसे खुश होंगे? ये उनके सच्चे हृदय से होना चाहिए। वो अपने हृदय की गहराई से आपको पिता कहें। क्या ये अच्छा लगता है जब आप पैसा देकर उनसे कहें कि वो आपको पिता कहकर पुकारें? पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें अपने हृदय की गहराई से और प्रभु को ग्रहण करें और जुताई पाएं। और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से उद्धार पाएं। वो इसे बलपूर्वक नहीं करना चाहता। ये न्याय के विरुद्ध है। इसलिए यदि परमेश्वर बिलाम को दबाव डाले कि वो ना जाए तो यह न्याय के विरुद्ध है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे परमेश्वर इस संसार में लोगों पर दबाव डाल सकता है कि वो पाप ना करें, मगर यह न्याय के विरुद्ध है। इसीलिए बिलाम बालाक के पास गया और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को मार्ग रोकने के लिए उसके सामने भेजा और गधे का मुंह खोला, ये दर्शाने के लिए कि वो जो कह रहा था वो कितना गलत है। गधे के मुंह के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बिलाम को कहा कि सुन, तेरा विरोध करने को ही मैं आया हूं, इसीलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। फिर उसने कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। और फिर जो राजा बालाक चाहता था, चीजें सब उसके विरुद्ध हुई। परमेश्वर ने इसराइलियों को बलाम के होठों के द्वारा आशीष दी। और ऐसा लगता है कि इस घटना का सारांश इसी प्रकार से निकला। परंतु नया नियम इस घटना को इस प्रकार से दर्शाता है, दूसरा पत्रस 2:15-16 पद में, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और भोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्लाहना दिया गया। यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्यों की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। परमेश्वर इसे बावलापन कहता है। परमेश्वर उसे बावलापन कहता है। इसलिए आपको यह बावलेपन का काम नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है कि नहीं? यहूदा एक अध्याय 11 पद में लिखा है, उन पर हाय कि वे केन ही की से चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरहे के नाई विरोध करके नाश हुए हैं। तो फिर बिलाम ने ऐसा क्या किया कि इस तरह की बातें उसके विषय में लिखी गई? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण करना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। गिनती 25 अध्याय 1 और 2 पद में यह लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, इसराइली शितीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में न्योता दिया तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। ये बिलाम ही था जिसने बालाक को इस तरह की बुरी योजना सिखाई कि इसराइलियों को धोखा दे। बिलाम जानता था, वो जानता था कि इसराइलियों को कैसे भरमाया जा सकता है ताकि वो परमेश्वर को क्रोधित करें। इसीलिए बिलाम ने ऐसी बुरी युक्ति की। मुआबी मूर्ति पूजक थे और वे बहुत सा बलिदान भरा भोजन अर्पण करते थे और मुआबी स्त्रियां कामुकता के साथ नाचती थी। आपने फिल्मों में या कहीं ना कहीं देखा होगा वो महिलाएं कामुकता के साथ नाचती हैं जब वो मूर्ति पूजाएं करती हैं। तमाम फिल्मों में आपने देखा होगा। बिलाम के उकसाए जाने के द्वारा मोआब के राजा बालाक ने इसराइलियों को अपनी आराधना में बुलाया। इसराइली लोग जंगल की साधारण जीविका के आदि हो गए थे, इसलिए वो इस जंगली रहन सहन से थक चुके थे, और जब उन्हें उस मूर्ति पूजा के स्थान में आमंत्रित किया गया तो वे अचानक से संसारिक चीजों के संपर्क में आ गए। ये आजकल के दिनों के समान नहीं है जब लोग पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने हृदय का खतना करते हैं और पापों को दूर करते हैं, मगर उन लोगों के लिए पाप ना करना एक अस्थाई चीज थी, इसलिए वे कुछ और नहीं कर पाए बल्कि संसारिक चीजों के संपर्क में बहुत जल्दी आ गए, और अंत में उन्होंने मूर्तों के आगे बलिदान किया हुआ भोजन खाया और महिलाओं के साथ कुकर्म करना शुरू किया। बिलाम के सिखाने के द्वारा मोआब का राजा बालाक ने इसराइलियों को इस तरह से पाप कराया और इसराइलियों को इस पाप को करने के परिणाम स्वरूप दंड दिया गया, जैसे कि गिनती 25 अध्याय 9 पद में लिखा है, और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। जो भी है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 8 पद में जो लोग मर गए थे उनकी संख्या 23,000 लिखी हुई है। क्यों यहाँ पर अंतर है? मरे हुए लोगों की संख्या में लगभग 1,000 का अंतर है गिनती में और पहला कुरिन्थियों में। क्या ये कोई गलती है? बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं है। बाइबल हमेशा से शुद्ध और सटीक है। गिनती में मरे हुए लोगों की संख्या 24,000 है और उसमें इसराइली और मुआबी स्त्रियां दोनों शामिल है, और दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की संख्या जो पहला कुरिन्थियों में लिखी हुई है 23,000, ये वो संख्या है जिसमें केवल इसराइलियों को गिना गया है। इस प्रकार से यदि हम बाइबल को पवित्र आत्मा की प्रेरणा में पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि बाइबल कितनी सटीक है, कितनी शुद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आत्मिक पाठ क्या है जो हमें बिलाम की इस घटना से सीखना है? सबसे पहले ये वो चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अपना मसीह जीवन समझौता करते हुए वैसा जीते हैं जैसा उन्हें अच्छा लगता है। जिस प्रकार से बिलाम मृत्यु के मार्ग पर चला गया यद्यपि वह परमेश्वर की इच्छा जानता था, वैसे ही ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो अपना मसीह जीवन संसार के साथ समझौता करते हुए जीते हैं। परमेश्वर कहता है कि संसार से प्रेम ना रखो। यदि आप संसार से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। मगर ऐसे कितने लोग हैं जो संसार से प्रेम करते हैं जबकि वे मसीह होने का दावा करते हैं, उन्हें संसार से अलग होना है मगर वो संसार से प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो संसार से समझौता करते हुए मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे संसार से और संसार की चीजों से परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं और फिर वे पाप कर बैठते हैं। दोनों ही पुराने और नए नियम में वहां पर नहीं लिखा है कि यदि आप पाप करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे कि आप बाइबल में देख सकते हैं, हमारा प्रभु, उसके चेले प्रेरित पौलुस, डीकन स्टीफनस, उन सभी लोगों ने हमेशा पापों को दर्शाया। पाप के अलावा बाइबल में और क्या है? बाइबल आपको कहती है कि आप पाप ना करें। वो आपको बताती है उन सभी प्रकार के पापों के बारे में और वो कहती है कि हमें हर प्रकार की बुराई से बचे रहना है, ज्योति में निवास करना है। पाप के कारण मृत्यु आई, मनुष्य जुताई शुरू हुई और पापों को दूर करने के द्वारा आप आत्मा में आ सकते हैं, परमेश्वर के खोए स्वरूप को पा सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। शत्रु दुष्ट और शैतान आपको पाप में डालता है, पाप करने के लिए भरमाता है और पाप को बोले बगैर मैं कैसे संदेश का प्रचार कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पापों के बारे में बहुत सा प्रचार किया है, लेकिन उसके अलावा मैंने स्वर्ग, नरक और आत्मा के बारे में आपको बताया है। लेकिन जो भी है, मैं कुछ और नहीं कर सकता बल्कि हर बार पाप के बारे में दर्शाता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें उसी के बारे में बताती है। हमारा प्रभु और उसके चेले प्रेरित पौलुस, डीकन स्टीफनस, उन सभी लोगों ने पापों को दर्शाया है, पापों के बारे में बात की है। दोनों ही पुराना और नया नियम में वो पाप के बारे में बातें करते हैं। तो फिर मैं क्या बात करूं यदि मैं पापों को हटा दूं तो? खास तौर पर आज, जैसा कि पहला तिमुथियों 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत से मसीह पाप करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से बढ़कर रुपयों से प्रेम करते हैं। पैसों के प्रति लालच के चलते वे प्रभु के दिन का उल्लंघन करते हैं या दशमांश को चुराते हैं जो कि परमेश्वर का है। यद्यपि परमेश्वर के दास को अपने आप को प्रार्थनाओं में और वचन की सेवा में लगाना चाहिए, मगर फिर भी कुछ ऐसे दास है जो पैसों और आदर के लालची है और संसार के अधिकार के साथ समझौता करते हैं। जैसे कि मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ना केवल परमेश्वर का दास बल्कि परमेश्वर की संतान भी, उन्हें भी केवल परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, केवल परमेश्वर से और केवल उसी की इच्छा पर चलना चाहिए, जिस तरह से प्रभु ने कहा है। बिलाम के समान ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए जो संसार से समझौता करता है। इसलिए अब कृपया अपने आप को मुड़कर जांचिए। क्या आप छोटे से समय के लिए क्यों ना हो बिलाम के समान अभिलाषा में नहीं फंसे? क्या आप सत्य के बारे में नहीं जानते थे? क्या आप उन शारीरिक चीजों को नहीं लेते जिसे बुराई प्रेम रखती है और परमेश्वर बैर रखता है? क्या आप शरीर के काम नहीं करते? क्या आप नहीं करते? क्या कुछ ऐसा है जिसे आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम रखते हैं? यदि कुछ ऐसा है जिसको आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करते हैं, तो प्रभु कहता है कि वह उचित नहीं है। या फिर क्या आप पिता परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से, पूरी इच्छा से और पूरे जीवन से प्रेम करते हैं? यदि आप पहली बार इस चर्च में आ रहे हैं, तो हो सकता है आप क्रोधित हो जब मैं आपको कहूं कि आपको केवल परमेश्वर से प्रेम करना है। परंतु पुराने सदस्य समझते हैं कि परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करना क्या है, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और प्रभु यीशु मसीह कौन है। चाहे कोई छोटी सी चीज क्यों ना हो, यदि वो बात सत्य को छोड़कर संसार से समझौता करना है, तो अंततः आप उसमें पड़ जाएंगे और शैतान उसके लिए आप पर दोष लगाएगा। इस चर्च में, वो चर्च जहां परमेश्वर की सामर्थ है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। यदि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मसीह जीवन जीना सिखाया जाए, तो फिर बहुत कम लोग होंगे जो चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। यदि मैं जवान लोगों को ये सिखाऊं कि वे अपना मसीह जीवन वैसा जिए जैसा उन्हें अच्छा लगता है, तो फिर कोई भी इस चर्च को छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु ये सीधे रूप से आपके उद्धार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको वैसे नहीं सिखा सकता। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई अंधा अंधे की अगुवाई कर रहा है। यदि कोई पास्टर ऐसा सिखाता है तो वे पाप करते हैं जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता परमेश्वर के सम्मुख। वे तो दास भी नहीं कहला सकते परमेश्वर के। चाहे पूरी की पूरी सभा चर्च को छोड़कर चले जाएं, तो भी उन्हें वैसा ही सिखाना है जैसा परमेश्वर ने उन्हें कहा है। वे लोग जो नहीं छोड़ते वे उद्धार प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता है कि आप एक ऐसा मसीह जीवन सिखाएं जहां पर आप वैसा जीवन जिए जैसे आपको अच्छा लगता है। यदि आप बिलाम का मामला देखें, उसने उद्धार तक नहीं पाया। जिस प्रकार से छोटा सा खमीर पूरे आटे में फैल जाता है, उसी प्रकार से यदि आप थोड़ा सा भी शैतान का काम करें, तो बाद में आप 2, 3 और 4 करने लग जाएंगे और अंत में आपका पूरा मन शैतान के अधीनस्थ हो जाएगा। शैतान एक एक करके इस तरह से आपको अपने नियंत्रण में करेगा। आप एक बार चर्च से गायब होते हैं, फिर 2 बार, और उसके बाद क्या? शुरुआत में तो आपको चर्च जाने की याद आएगी, मगर आप महीने में 1 बार गायब होते हैं, फिर 2 बार हो जाता है, और फिर इस तरह से महीने में 3 बार, और बाद में पूरी साल भर ऐसा होता है, और अंत में आप चर्च से दूर हो जाते हैं। यदि आप पाप 1 बार करें, फिर 1 बार और, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो उसके बाद आपका हृदय कुमला जाता है। सबसे पहले तो आप डरते हैं कि कहीं आप नर्क ना चले जाएं। मगर अगर आप पाप करना दोहराएं, तो आपका हृदय कुमला जाता है और फिर आपको डर तक नहीं लगता। पूरी तरह से आप पापों में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, वंचित किया जाता है जब वे शरीर से दबित होते हैं। पिरगमन की कलीसिया के सदस्यों में ऐसे लोग थे, परंतु वहां पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने अंतिपास की शहादत को भी देखा था। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे और संसार से समझौता करते थे। प्रभु गंभीरता से न केवल पिरगमन की कलीसिया के ऐसे लोगों को डांटता है, बल्कि उन्हें भी जो आजकल के दिनों में बिलाम की शिक्षाओं पर चलते हैं। वो उन्हें कहता है कि वो पश्चाताप करें। हम लगातार इस बात को देखते रहेंगे कि हमें बिलाम की शिक्षा से क्या सीखना है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 2 तिमोथियो 3:1-5 पद में यह हमें इस तरह से अंत के दिनों के बारे में चिताता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी। कृपया आप अपने आप को जांचिए कि कहीं आप अपने आप से ही तो प्रेम नहीं रखती। लोभ ही, आपको इसे भी जांचना है, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, पैसों का लोभ ही, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, क्रुद्धन, अपवित्र, मयार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इस प्रकार से बाइबल हमें चिताती है कि अंतिम दिनों में क्या होगा। उसके बावजूद भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं जैसे कि कहा गया है। मगर ज्यादा दुख की बात तो यह है कि अधिक से अधिक लोग जो दावा करते हैं कि प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। हालांकि वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मगर वो उसे केवल ज्ञान के रूप में रखते हैं और वे उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर आपको कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आप उसकी आराधना कीजिए। इस तरह का वचन आपके हृदय में बोया गया है और आप परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं, मगर जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते तो वचन आपको ना तो शहद और ना तो शहद के छत्ते के समान मीठा लगेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि आप जल्द से जल्द सभा खत्म होने की कामना करें और आप परमेश्वर के वचनानुसार जीने की कोशिश नहीं करते। जब आप आराधनाओं में आते हैं, आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा और हृदय एहसास कर सके और वचन को अपने हृदय में बो सके। ये आपके लिए अनुग्रह बनेगा जिसके द्वारा आप वचन का अभ्यास कर पाएंगे और मसीह जीवन जी पाएंगे। आपको अपना मसीह जीवन इस तरह से जीना चाहिए, मगर क्या लाभ होगा जब आप आराधना तो अर्पण कर रहे हैं लेकिन केवल एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हैं। परमेश्वर के हृदय को जानने और वचन के अनुसार जीने के लिए आप परमेश्वर को आराधना सभा अर्पण करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं मगर उसके सामर्थ्य को नहीं मानते। प्यारे भाई और बहनों, पिरगमन के कलिसिया में ऐसा विश्वास योग्य साक्षी था जैसे कि अंतिपास, जिसने शहादत दी प्रभु के नाम के चलते। मगर दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जो बिलाम की शिक्षाओं पर चलते थे, संसार के साथ समझौता करते हुए और संसार से प्रेम करते थे। हालांकि वो एक ही प्रकार के वातावरण में थे, एक ही प्रकार का संदेश सुनते थे, लेकिन आत्मा और शरीर वो साफ रूप से इस तरह से अलग अलग थे। और यही आज भी लागू होता है। जैसे जैसे अंत करीब आता है उतना ही साफ रीति से आत्मा शरीर से अलग होता है। इसीलिए मैं आपसे दृढ़ता के साथ विनती करता हूँ कि आप में ऐसा कोई ना हो जो संसार में पड़े और अंत के इन दिनों में संसार से प्रेम रखे, जैसे कि कुछ पिरगमन की कलिसिया में थे जो बिलाम की शिक्षाओं पर चलते थे। मैं सचमुच आशा करता हूँ कि आप सब विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास के समान बने, जिसने यहाँ तक कि ऐसे स्थान में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ा जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। आप सभी के सभी धन्य बन सके, प्रशंसा महिमा और प्रतिफल प्राप्त कर सके, जिसे प्रभु उन्हें देता है जो जय पाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।